वर्ष 1925 में अपनी स्थापना के बाद यूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने कई बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लेकिन हाल ही में मेरठ में आरएसएस ने एक आयोजन किया है और बताया जा रहा है कि उसमें जो स्वयंसेवक शामिल हुए थे उनकी संख्या 4 लाख से भी अधिक थी। एक जानकारी यह भी है कि कुछ वर्षों पहले मथुरा में भी इस तरह का एक आयोजन किया गया था, लेकिन वहाँ पर संघ से जुड़े जो लोग थे और भाजपा के बड़े चेहरे उसमें शामिल हुए थे, लेकिन मेरठ इसलिए खास है क्योंकि वहाँ पर भारी तादाद में, लाखों की तादाद में स्वयंसेवक शामिल हुए थे और यह इसलिए महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। हमारे साथ शेषाद्री चारी सर होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इसके क्या मायने निकाले जाए। सर, आने वाला साल 2019 में लोकसभा चुनाव है, क्या संघ रोडमैप तैयार कर रहा है लोकसभा चुनाव के लिए इस तरह के आयोजन करना, खासतौर पे सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर दलित बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, और वहाँ पर क्या लगता है सर आपको, क्या रोडमैप तैयार किया जा रहा है? सर
देखिए, आपने जैसे कहा संघ की शुरुआत 1925 में हुई और नागपुर में, अगर संघ राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर अपना काम करता है तो 1925 के बाद जितने चुनाव हुए 1950-51 से लेकर 2018 तक जितने चुनाव हुए उनमें से अक्सर सभी चुनावों में संघ के प्रतिनिधि या संघ जिस राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है वो उसके प्रतिनिधि को जीतना चाहिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि 1925 से लेकर 1995 तक नागपुर में बीजेपी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आया। सबसे पहले जो बीजेपी के एमपी के नाते चुनकर आए वो बनवारीलाल पुरोहित पहले कांग्रेस में थे, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तब कहीं जाकर बीजेपी की सबसे पहली सीट आई। इसलिए जो संघ के कार्यक्रम होते हैं वो राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं, समाज के लोगों का संगठन इसके लिए संघ कार्यक्रम करता है। इसके पहले भी संघ के जितने कार्यक्रम हुए उसमें भी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोग आए हैं। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें से कोई बीजेपी के व्यक्ति जीता नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं जीता। इसीलिए संघ के कार्यक्रमों को बीजेपी की हार जीत के साथ जोड़कर देखना सही नहीं है।
बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल विचारधारा है, पॉलिटिकल विंग है, तो चर्चाएं ऐसी हैं कि चुनाव के मद्देनज़र ये एक साधा जा सकता है चुनाव को देखते हुए। सर, वहाँ पर जो स्थिति नज़र आई, सर कासगंज की जो हिस्सा हुई है, इसके अलावा जो सहारनपुर ही आसपास का जो क्षेत्र है, तो सर ये क्यों ना ये मायने निकाले जाए कि यह जो संघ ने ये जो आयोजन किया भारी तादाद में ऐसे वक्त में जब मैं बार बार दलित शब्द का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सर सहारनपुर हिंसा, मुजफ्फरनगर की हिंसा जो हुई थी उससे एक बहुत बड़ा खेमा बीजेपी से नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सर अगर वहाँ पर इस तरह से आयोजन हो रहा है तो क्यों ना सर यह माना जाए कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है आने वाले चुनाव में।
ये जो कार्यक्रम अभी हुआ मेरठ में 2018 में, वो कार्यक्रम 2016 में तय हुआ, वो जिस कार्यक्रम जिस मीटिंग में तय हुआ था उस मीटिंग में मैं था। अब ये कहना कि 2016 में संघ ने 2018 में क्या होने वाला है ये पूरा पहले से तय करके ये कार्यक्रम किया, ये हास्यास्पद है। संघ के जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके जो बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें लाखों के तादाद में लोग आते हैं, स्वयंसेवक आते हैं, ये सब एक एक डेढ़ डेढ़ साल पहले तय होता है। संघ के सरसंघ चालक का जो प्रवास है वो नागपुर में अभी मार्च में जो मीटिंग होने वाली है उसमें 2018 में पूरे 2019 तक के कार्यक्रम तय होते हैं और उसमें अक्सर परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसका आशय कुछ और है, समाज में जो लोग हैं और जिनको संघ के बारे में कुछ मालूमात दी जानी चाहिए और जो संघ के स्वयंसेवक अनेक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका एक एकत्रीकरण के नाते कार्यक्रम होते हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों को राजनीति के साथ जोड़कर देखना ये न केवल गलत होगा, परंतु संघ के जो कार्यक्रम होते हैं और संघ के जो काम है, संघ का जो काम है उसके प्रति भी एक बहुत बड़ी अनास्था दिखाने वाली बात होती है। इसलिए समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें संघ में, संघ के साथ, संघ के विचारों के साथ, संघ के कार्यपद्धति के साथ, और संघ प्रेरित जो समाज सेवा के कार्यक्रम चलते हैं उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ें, यही प्रयत्न है। लोगों के मन में, दिल में राष्ट्रभक्ति हो और देश के प्रति हम अपना कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं, इन बातों को प्रचार करने की दृष्टि से संघ कार्यक्रम करता है। लेकिन संघ की जो ताकत है वो इन कार्यक्रमों से बढ़ता नहीं है, संघ की ताकत संघ की शाखा है। इसीलिए जो स्वयंसेवक शाखा में जाते हैं वही ऐसे कार्यक्रमों में अधिक तादाद में आते हैं।
सर, आपने संघ की ताकत की बात की, थोड़ा एक सवाल मैं आपको लीक से हटकर पूछना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के पेट में दर्द हो रहा है कि संघ की वहाँ पर शक्ति बढ़ रही है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सर तो बौखलाई हुई लगती हैं सर ममता बनर्जी?
ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित होकर कुछ करती हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा घाटा है, वो विद्यार्थियों को होता है। किसी भी सरकार को, केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, एक आर्थिक दृष्टि से प्रगत गुजरात या महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में भी केवल सरकार सभी लोगों तक, सभी शिक्षार्थियों तक, विद्यार्थियों तक शिक्षण पहुंचा नहीं पा रही है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स की संख्या है, और अगर प्राइवेट स्कूल्स के अलावा सामाजिक संगठन अगर स्कूल चलाते हैं और इस तरीके से शिक्षण का प्रसार करते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये केवल संघ वहाँ पर स्कूल चलाता है ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर श्री श्री रविशंकर के भी स्कूल्स चलते हैं, रामकृष्ण आश्रम जो है, आरके आश्रम जो है, रामकृष्ण आश्रम जो है, वो इनसे भी अधिक स्कूलें चलाती हैं, और एकल विद्यालय चलते हैं। एकल विद्यालय मतलब वन टीचर वन स्कूल। तो इन सभी बातों का अच्छा असर होता है समाज पर। ये तो पश्चिम बंगाल की बात है। मुझे तो ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर, जहाँ सरकारी अफसर और पुलिस नहीं जा सकते हैं, ऐसे स्थानों पर आरएसएस के लोग स्कूल चलाते हैं, और उसमें जो नक्सली मूवमेंट से जुड़े नेता हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इसलिए ये जो सामाजिक काम होते हैं इसको सामाजिक तौर पर ही देखना चाहिए, और अगर ममता बनर्जी इस तरीके के काम कर रही हैं तो हम बात करेंगे उनसे, बातचीत के द्वारा इस प्रश्न को हल निकालेंगे इसका भी।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ शेषाद्री चारी सर जुड़े हुए थे बरेली एसडब्ल्यू न्यूज़ के साथ। नमस्कार।